नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफरीन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने रचनात्मक ढंग से अपने मुद्दे रखे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी संबंधित मुद्दों पर अपने विचार और प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक के बाद गृहमंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। ये दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। इसमें 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ब्रिक्स देशों के युवा मंत्रियों की बैठक आज शाम विशाखापट्टनम में होगी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। बैठक में खेल के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल है। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था के मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहला जहाज एमटी सिबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
2 ships which are foreign flag. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कैनेडाई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज तड़के लागू हो गए। कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कैनेडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच एम्स्टरडेम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के साथ भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया। उधर BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैंडिंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।